सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्र तेभ्य आचष्ट तत्सर्व यदुक्तम योग निद्रया। तस्याम उस प्रसिद्ध रात्रि के बीतने पर तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम जन्माष्टमी की रात बीत गई। उस रात के रात में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भगवान गोकुल चले गए और योग माया को लेकर श्री वसुदेव जी आए कंस के कारागृह। कंस देवकी के पुत्री को यशोदा की पुत्री को मारना चाहता वो उससे आश्चर्य हो गया कि आठवें गर्भ के रूप में पुत्र न होकर के पुत्री हो गई। और जब मारना चाहा उस बच्ची को योग माया को तो उसके हाथ से आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट हुई है। उसके आठ भुजा थे, भुजाओं में धनुष बाण शूल शंख चक्र गदा इत्यादि आयुध थे। बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे और शरीर पर अंगराग लगाई थी। देवता चारुण चारण गंधर्व अप्सराएं सब स्तुति कर रहे थे माता दुर्गा की। सब बहुत सी भेंट की सामग्री अर्पित कर रहे थे। वो भगवान की शक्ति है ना, इसलिए सब भगवान के समान आदर करते थे। वह देवी कंस के हाथ से छूट करके इसी पृथ्वी पर आई बाद में, और कई स्थान पर उसके मंदिर बने हैं और कई नाम से वो पुकारी जाती है। उसके नाम प्रभुपाद जी रखे हैं। कलकत्ता में उसे काली कहा जाता है, भद्रकाली। और कटक में भी भद्रकाली ही कहा जाता है। अहमदाबाद में भद्रा, बॉम्बे में मुंबा देवी, ये सब प्रसिद्ध है नाम। उस देवी ने आकाशवाणी किया बहुत जोर की गर्जना करके। कंस को कहा कि अरे मूर्ख, क्यों बेकार बच्चों की हत्या कर रहे हो। माँ हिंसी कृपणान वृथा, व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। इस घटना को सुन करके देख करके कंस बड़ा आश्चर्यचकित हुए, उसे बहुत बड़ा भय हुआ। देवकी वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त कर दिया, उनकी बेड़ी को खोल दिया। परंतु उसे उस रात में जन्माष्टमी की रात में नींद नहीं आई। धर्मनंद गांव में गोकुल में उत्सव हुआ नंद महाराज का, परंतु कंस रात भर थर थर कांपता रहा। कि हमको मारने वाला कहीं जन्म दे चुका। दूसरी चिंता यह भी थी कि मैं व्यर्थ बच्चों की हत्या कर दिया देवताओं की बात मान करके। हमको मारने वाला विष्णु कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया और वो भी पता भी नहीं है, ये उसको बहुत बड़ी चिंता थी। तो किसी तरह से सवेरा हुआ चिंता में ही तस्याम रात्रम व्यतीताया, जन्माष्टमी की वह प्रसिद्ध रात्रि बीत गई। प्रभात हुआ, प्रभात होते ही वह अपने मंत्रियों को बुलाया, चाहे फोन से बुलाया चाहे डायरेक्ट तो भेज करके बुलाया सभी मंत्रियों को। वे मंत्री एक नंबर के दुष्ट थे, हिंसक थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नैसर्गिक वैर था देवताओं से। देवताओं के शत्रु तो थे ही और कृतामर्ष और अमर्ष भी देवताओं के साथ था। अमर्ष का अर्थ है किसी के उत्कर्ष को न सहना। बड़े ही जिद में थे देवताओं का नाश करने के लिए। ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो किसी के प्रति अमर्ष से भरा हो और शत्रु हो। पर कंस के सभी मंत्री ऐसे ही थे। कंस आहूय मंत्रिण, कंस बुलाया मंत्रियों को और मंत्रियों से कहा है हे बंधुगण सुनो, मैं बहुत चिंता में हूँ। तेभ्य अचष्ट तत्सर्वम, सारी बातें सुना दिया शुरू से अंत तक। जदुक्तम योग निद्रया, जो योग निद्रा ने कहा था भगवान की माया शक्ति को, योग माया भी कहते हैं, माया भी कहते हैं और निद्रा भी कहते हैं, योग निद्रा। तो योग निद्रा देवी ने जो भी कहा था वो सब सुना है। बंधुओं सुनो ध्यान से, देवी योग निद्रा ने क्या कहा है, कब कहा है मैं बता रहा हूँ। ये रात्रि का तीसरा पहर था। चार पहर की रात होती है और चार पहर का दिन होता है। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा। हमको कारागृह के द्वारपालों ने खबर दिया है कि आप देवकी का आठवां पुत्र हो गया है। मैं तड़ातड़ी जल्दी से जल्दी गया देवकी के प्रसव गृह में। जाकर के देखा, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ये आठवां पुत्र न होकर के पुत्री के रूप में जन्म लिया। मैं समझ गया कि देवताओं की कोई चाल है या विष्णु की माया है मुझे छलने के लिए। वह लड़की के रूप में आया है। इसके बाद देवकी ने बहुत विनय किया मुझसे, कन्या की रक्षा के लिए, लेकिन मैं अपने काल को क्यों छोड़ता है। उस कन्या के चरण को पकड़ करके मैं खींच लिया देवकी की गोद से और उसे पत्थर पर पटकने की चेष्टा किया। सुनो ध्यान से क्या आश्चर्य, वो योग निद्रा मेरे हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई और आकाश में जाते समय वह मेरे पैर पर, मेरे सिर पर पैर मारी, मेरा माथा भी चकरा रहा है, मैं होश में नहीं हूँ। देवी योग निद्रा ने हमको कहा कि अरे मूर्ख कंस, तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका तुम्हारा पूर्व शत्रु विष्णु। तो मुख्य बात यही है मेरे मंत्रियों कि मुझे मारने वाला मेरा पूर्व शत्रु जन्म ले चुका है, तो अब पता लगाना है वो कहाँ जन्म लिया है। अपने स्वामी की बात को सुन करके कंस के मंत्री स्वामी कंस से बोले, सुखदेव जी कहते हैं कि वे देवताओं के सहज बैरी थे और अमर्ष भरा हुआ था। उन लोगों ने कहा, सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, माता दुर्गा के वाक्य पर पूरा विचार नहीं किया, केवल इतना ही समझा कि हमारे स्वामी को मारने के लिए विष्णु कहीं जन्म ले चुका, भय से देवकी के यहाँ जन्म नहीं लिया, कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो मंत्रियों ने सुना बात को और ये पूछे, ये कहे एवं चेत, सरकार अगर ऐसी बात है कि आपको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका कि आप चिंता मत कीजिए, आप रात भर की जगह हैं, चिंता से जल रहे हैं, चिंता छोड़िए, हम लोग विष्णु को कहीं भी होगा खोज करके मार देंगे। पहला उपाय कीजिए, आप हमको अप्रूवल दीजिए, एवं चेतर ही भोजेन्द्र पूरा ग्राम व्रजादिषु, सभी नगरों में, सभी गांवों में और गोपों की बस्तियों में अनिर्दशान 10 दिन से कम, 10 दिन से कम जितने भी बच्चे हैं या निर्दशन या 10 दिन पार कर गए हैं, सारे बच्चों को हमेशा मद्वय शिशु हम आज ही मार डालेंगे। से कम के 9 दिन के, 8 दिन के, 7 दिन के, या आज के 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, जितने भी बच्चे हैं या 10 दिन से ज़्यादा के निर्दशन, निर्दशन का जिनका 10 दिन निकल गया है, आयु बीत गई है 10 दिन के ऊपर के, या अनिर्दशन या 10 दिन से कम के बच्चे, हम आज ही सबको मार डालेंगे। विष्णु जन्म लिया होगा किसी नगर में या गांव में अथवा गोपों की बस्तियों में, तो हमको आज्ञा दीजिए, हम आज ही आपकी चिंता दूर कर देंगे। विष्णु जन्म लिया होगा तो 10 दिन के अंदर या 10 दिन से कुछ ज़्यादा, अभी तो वयस्क नहीं होगा, बच्चा होगा, तो हम अवश्य उसका वध करेंगे। उन बच्चों की हत्या करेंगे तो उसी में से कोई बच्चा विष्णु होगा ना, क्या बुद्धि है कंस के मंत्री में। निश्यामो अद्य वय शिशुन, आज ही, अद्य वय का अर्थ है आज ही, शिशुन हनिश्याम, शिशुओं का वध कर देंगे। हमें बहुत दुख है कि आप इतने चिंता में हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता का नाश यदि हम नहीं करेंगे तो हम आपके मंत्री होकर क्या करेंगे। उन मंत्रियों में प्रधान था प्रलंब, केसी, चारुण आदि, उतना भी आई थी, वो भी मंत्री थे, तो उसने कहा यदि ये लोग जाएंगे बच्चों का वध करने तो उनको लेकर के माता पिता छिपा देंगे, मैं एक उपाय करूंगी, जैसा समाज होगा उसी के अनुसार रूप बनाऊंगी, बहुत सुंदर रूप, और अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके दूध पिलाऊंगी बच्चों को, ऐसा विष कि मेरे स्तन से केवल वो होठों का स्पर्श हो जाए बस बच्चा मर जाएगा। इस तरह से कपट से मैं नारी बन करके और शिशुओं को दूध पिला पिला करके मार देंगे। कौन से उतना के प्रस्ताव पर तुरंत हस्ताक्षर किया, ताली बजाए मंत्री में, बहुत अच्छा। और इसके बाद कुछ मंत्रियों ने कहा कि सरकार एक निवेदन करेंगे, आप इतना धर्मात्मा हैं कि आपके आपके धर्म पालन के कारण देवता जी रहे हैं, नहीं तो अब तक वे नहीं जिए थे। आपका ये नियम है कि कोई भय से आपकी शरण में आ जाए तो उसे आप नहीं मारते हैं। भयभीत होकर के कोई हाथ जोड़ ले आपके सामने, कह दे कि मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे मत मारिए, तो आप छोड़ देते हैं। बस आपकी दयालुता के कारण देवता जी रहे हैं। रथ जिसका भ्रष्ट हो गया है, जिसका रथ टूट गया है, उसे आप नहीं मारते हैं। जिनका चाप धनुष टूट गया है, उन्हें आप नहीं मारते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि अपनी गलती को सुधारिए। इतना दयालु मत बनिए, देवताओं को आप छोड़ दिए, वे कपट से आपकी शरण में आए और फिर आपके साथ दगा करते हैं, फिर आपका अनिष्ट करते हैं। इन देवताओं में क्या है, कोई शक्ति नहीं है। किमुद्यमे करिष्यन्ति देवा समर भीरव, देवता समर भीरु है, युद्ध से डरते हैं। किसी ने कह दिया कि जब बच्चों की हत्या की जाएगी तो देवता सामने आ जाएंगे, युद्ध करेंगे। इसी पर अन्य दुर्मंत्री कह रहे हैं कि किमुद्यमे करिष्यन्ति देवा समर भीरु, देवता स्वाभाविक ही समर भीरु हैं, युद्ध भीरु हैं, क्या उद्यम करेंगे। अरे आपको याद है कि नहीं, केवल आपके धनुष की टंकार से, जया घोष है, जया के घोष से धनुष की रस्सी को जो आप खींचते हैं चलाने के लिए, तो उस धनुष की डोरी के आवाज से ही स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। यह बात कुछ कुछ सत्य भी है। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि एक बार कंस के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध। उस युद्ध में इंद्र युद्ध भूमि छोड़कर के भाग गए। अब कई देवता बुरी तरह से घायल हुए। सबसे अच्छी बात है कि देवताओं के रक्षक श्री भगवान हैं। देवता और दानों में युद्ध होता ही रहता है, ऐसी प्रकृति उनकी है, दैत्यों की, वे अत्याचार करते ही हैं। और भगवान ने अपने भक्तों को, देवताओं को नियुक्त किया है दैत्यों के अत्याचार को रोकने के लिए। देवता रोकना चाहते हैं लेकिन दैत्य अत्याचार करते ही रहते हैं, इस कारण से युद्ध होता ही रहता है। इस युद्ध में कई बार देवता भी हार जाते हैं, लेकिन अंततः देवताओं की विजय होती है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। विविध अवतार लेकर के कई प्रकार से रक्षा करते हैं। अंततः देवताओं की विजय होती है, यही एक आश्वासन की बात है। कुछ भी दुख होता है लेकिन देवता भोग लेते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान पूरा पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस विश्व में दो दल है, सुर दल और असुर दल। असुर सदा भगवान के द्रोही होते हैं, भगवान के भक्त देवताओं के द्रोही होते हैं। इस कारण से देवता उनके साथ लड़ते रहते हैं, कोई भी अवसर मिलता है तो युद्ध हो ही जाता है। कंस के अनुचर मंत्रीगण कह रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी भूल है, आप देवताओं पर दया करके छोड़ देते हैं। जो वीरथ हो गया, रथहीन हो गया, उसे आप नहीं मारते। अन्य शक्त और कोई अन्य काम में रहता है उसको भी नहीं मारते। कोई घायल की सेवा शुश्रूषा करता है तो उसे आप नहीं मारते, या भोजन पहुंचा रहा हूँ तो उसे आप नहीं मारते। जो अस्त्र शस्त्र यूज करना भूल गया है उसे आप नहीं मारते, या अस्त्र शस्त्र भूल करके आ गया है युद्ध भूमि में तो उसे आप नहीं मारते। इस तरह देवता छल करके आपसे बच जाते हैं। कंस ने कहा कि मित्रों, मुझे बहुत बड़ा भय है हरि से, विष्णु से। देखो, विष्णु के हाथ में चक्र रहता है, सुदर्शन चक्र। तो इतिहास है कि सुदर्शन चक्र असंख्य दैत्यों का वध किया है अब तक। शंकर के हाथ में त्रिशूल है, उससे भी दैत्यों का बहुत वध हुआ है। और इंद्र के हाथ में वज्र है, ब्रह्मा सहायता करता रहता है देवताओं की, मंत्रणा देता है। इन चार से मुझे बहुत बड़ा भय है। तो मंत्री कहने लगे, सुनिए, कोई भय नहीं है। चापलूसी कर रहे थे, हरि तो निर्जन वासी हो गया है, ऐसे जगह रहता है कि पता नहीं चलता। हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यपु महाराज गए थे उसके घर वैकुंठ में, पर पता नहीं लगा। वो है, रहता है कहीं न कहीं, और कब प्रकट होगा ये पता नहीं लगा। है तभी ना अवतार लेता है जन्म लेता है। तो आप चिंता छोड़िए, विष्णु है पर आज तक उसका पता नहीं लगा, बहुत से लोग खोजते खोजते हार गए। और शंकर की बात है तो शंकर तो वनवासी है, आपने सुना है सुमेरु पर्वत के तलहटी में एक वन है इलावृत वर्ष में, तो वो वहीं रहता है, केवल पार्वती जी के साथ वो युद्ध क्या करेगा। नौम स्कंध में कथा है, एक बार ऋषि लोग जा रहे थे शिव का दर्शन करने, और शिव की पत्नी पार्वती अपने पति की गोद में बैठी थी, उसे देख करके बहुत लज्जा आई, इसलिए शंकर ने ये व्यवस्था कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो तुरंत स्त्री बन जाएगा। वहाँ तो कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, जाते ही स्त्री हो जाएगा। तो उसी वन में शंकर रहता है और बड़ी बड़ी व्यवस्था कर देती है, कोई सैनिक कोई दैत्य या कोई देवता भी वहाँ जा नहीं सकता है, उसे तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, निश्चिंत रहते हैं। उसे डरने की बात नहीं है कि किमिंद्रणाल वीर जन और इंद्र की बात करते हैं आप, इंद्र तो अल्प शक्ति वाला है, उससे डरिए मत। ब्रह्मणावाद तपस्या का है और ब्रह्मा एक शक्तिशाली देवता है, परंतु वो सर्वदा समाधि में ही रहता है, अपने अष्टलोचन को बंद करके ध्यान करता रहता है। कभी ध्यान नहीं करता है तो वेद का अध्ययन करता है, वेद पढ़ता है। कभी आपने सुना है किसी युद्ध में भाग लिया है, केवल वेद पढ़ने में तपस्या करने में ध्यान करने में लगा रहा है, तो ब्रह्मा से भी कोई भय नहीं है। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या, कोई भय नहीं है। पहले आप भय छोड़िए, चाय पानी पीजिए, स्नान कीजिए, शांत रखिए दिल को, पर कुछ ही देर के बाद दैत्यों ने कहा, मंत्रियों ने, तथापि देवा साप अपने अनुपेक्षा इति मन में, फिर भी हम कह रहे हैं देवता आपके शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात सत्य है कि देवता शक्तिहीन है, तुच्छ है, लेकिन जैसे शरीर में रोग होता है तो रोग को तुच्छ समझ करके उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यथा मयोंगे समुपेक्षित निर्भीर न शक्यते रूढ़ पदस्थ चिकित्सित तथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित तथा रिपुर महान बद्ध बलों में चल। जैसे शरीर में तुच्छ रोग भी हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रोग छोटा है और समय पा करके रोग बलवान हो जाता है। इसी प्रकार शत्रु छोटा भी हो कमजोर भी हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो समय पा करके सेना को इकट्ठा करता है, और बड़ा बन करके रिपु बद्ध बलों में चाल देते हैं। इसी प्रकार से शरीर में यदि कोई रोग है तो तुच्छ है, लेकिन उचित दवा लेकर के औषध लेकर के कुपथ्य से बच करके उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। शुरू में रोग कमजोर रहता है तो रोग को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन वही रोग यदि उपेक्षा कर दी जाए तो सैकड़ों चिकित्सा से भी वो ठीक नहीं होता है। यह श्लोक हमको बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें मेडिकल साइंस है। कंस के मंत्री ये बोल रहे हैं, यथा मयोंगे समुपेक्षित निर्भीर न शक्यते रूढ़ पदस्थ चिकित्सित। यदि शरीर में कोई रोग हो तो जब जड़ जमा लेता है रूढ़ पदर चिकित्सित न शक्यते, फिर चिकित्सा से उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं होती। लेकिन कंस समझदार था, वो कह दिया कभी कभी ऐसा होता है कि औषधि सेवन से और उचित सुपथ्य के सेवन से रोग चला जाता है। तब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित था, जैसे इंद्रियों का समूह नाक कान आँख कई इंद्रियां हैं, जीवा रसलिंद्रिया, यदि इनकी उपेक्षा कर दी जाए इनको शुरू में ही कंट्रोल न किया जाए संयम न किया जाए तो ये इंद्रियां अपने विषयों को भोगती रहती हैं और बाद में योग किया जाए तपस्या की जाए कोई भी कर्म किया जाए ये सुनती नहीं है। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इसलिए प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करना चाहिए। शुरू में ही यदि संयम किया जाए, कोई गलत दृश्य न देखा जाए, गलत बात न सुनी जाए, तो इंद्रियां अपने बस में रहती हैं। लेकिन यदि छोड़ देंगे इंद्रियों को, अपने अपने विषयों में लगी रहें, तो फिर ये योग से, तपस्या से, किसी उपाय से बस में नहीं होती। इसलिए उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़ा सा है, इंद्रियाँ थोड़े से विषय को ले रहे हैं, केवल एक दो मिनट हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। कोई गलत दृश्य देखना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति सोचे कि एक मिनट देखें क्या होगा, एक मिनट देखने से उसका संस्कार पड़ जाता है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, एक ब्राह्मण बहुत पवित्र थे, वो पिता की आज्ञा से वन में गए। वन में संध्या लेने के लिए, फल फूल लेने के लिए, वन से भवन की सामग्री, फल फूल आदि लेकर के लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक कुलटा स्त्री को देख लिया, बहुत अल्प समय के लिए। उनका नाम था अजामी, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, बहुत पढ़े लिखे, शास्त्र के मर्मज्ञ। और देखे स्त्री को, उस स्त्री के साथ एक लंपट पुरुष को देखा, वह उसे अभिनंदन किए थे। देख करके उन्होंने अपने मन को हटाने की चेष्टा किया, अपनी दृष्टि को हटाने को, लेकिन दृष्टि हटी नहीं। केवल एक दो मिनट देखने का एक परिणाम हुआ। वे घर आए, अपने पिताजी को फल फूल दे दिए, समझा दे दिए, और स्त्री के पास आए। फिर केवल एक मिनट देखने का परिणाम हुआ। आ करके उसको कहे, तुम हमारे घर चलो, केवल एक मिनट सिर्फ ये गिर गए। अपने घर में ला करके रखे, अपने पास जो भी धन था उस वेश्या को रिझाने में समाप्त कर दिए। अच्छा अच्छा कपड़ा लाने के लिए, गहना लाने के लिए सारा धन खत्म कर दिए। जो पिता का पैतृक धन था और सब स्त्री में लगा दी। संयोग की बात थी, भगवान की कृपा कि उनके 10 पुत्र हुए उस वेश्या से, और छोटे पुत्र का नाम नारायण रख, नारायण भगवान का नाम। इसमें बड़ी आसक्ति थी अजामिल पंडित की। खेलते समय, खाते समय, सब समय बच्चे की आसक्ति में जो पड़े रहते। अंत में बुढ़ापा आ गई, और उन्होंने बहुत पाप किया था, चोरी, हत्या, सब कुछ किया था। वेश्या को खुश करने के लिए, धन लाने के लिए कोई भी पाप करते। इसलिए जमराज जी ने आज्ञा दिया अपने दूतों को लाने के लिए। तीन दूत आए अजामिल के पास, बड़े विकराल। अजामिल उस समय मृत्यु सज्जा पर पड़ा था। पर उसकी आदत थी अपने बेटा को पुकारने की, तो शोक में पड़ गए कि हाय मेरा बेटा छूट जाए। और वह बेटा थोड़ी दूर पर उसी घर में खेल रहा था, तो उसको पुकारा। पुकारने की शक्ति नहीं थी, पर किसी भी तरह से उच्चारण किया, नारायण आय, हे नारायण आओ। बहुत मुश्किल से उच्चारण किया, नारायण आय कहते हैं। नारायण भगवान के चार दूत आ गए। उन्होंने जमराज के दूतों को फटकार करके भगा दिया, जमपास खोल दिया। कुछ बहस भी हुई। जमराज के दूतों ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, किन पापी का पक्ष ले रहे हैं, उसके पापों की कथा पूरी पूरी सुना दिया। यह पापी बहुत उच्च कुल में जन्म लिया था, लेकिन अपने जन्म को नष्ट कर दिया, वेश्यागमन किया। इस वेश्या से इसके 10 पुत्र हुए, अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। इसको हम शुद्ध करने के लिए ले जाएंगे नरक में। आप लोग ऐसे नारगी का पक्ष क्यों कर रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, आप लोग पंडित हैं, विद्वान हैं, जमराज जी के सेवक हैं, आपको पता होना चाहिए कि पाप का प्रायश्चित यदि कोई कर लेता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता है। तो फिर जमदूतों ने कहा, इसने तो कुछ प्रायश्चित नहीं किया, यह दंड से शुद्ध होगा। जब नरक लोक में इसकी पिटाई होगी, आग में जलाया जाएगा, तब ये शुद्ध हो सकता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये प्रायश्चित कर चुका है, आप लोगों को यह ज्ञान नहीं है। इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, इसी से इसके कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो गया। तब जमराज के दूत ने कहा कि ये बात हम मानते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप दूर हो जाता है, लेकिन इसने तो भगवान का नाम लिया नहीं, नाम लिया हम लोगों के भय से, और अपने बेटा का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे किसी भी तरह से भगवान का नाम यदि जीव पर आता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो पाप नष्ट हो ही जाता है। भले ही अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन नाम वास्तव में भगवान का है, नारायण। तो अनजान में भी भगवान के नाम का कीर्तन समस्त पाप राशि को नष्ट कर देता है। एक जन्म का पाप नहीं, कोटि जन्म का पाप नष्ट हो गया। जैसे अग्नि का धर्म न जाने वो कोई बच्चा उसको छुए तो अग्नि जला ही देता है, बच्चे के अज्ञान पर वो विचार नहीं करते हैं, यह बच्चा है मेरा गुण धर्म मेरा प्रभाव नहीं जानता है इसे छोड़ देना चाहिए, इसे नहीं। तो अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, और बलवान अवध अवसर जैसे अमृत है, अमृत अपना प्रभाव को दिखाएगा ही, अगर कोई उसे पानी भी समझ कर पी जाए फिर भी उस व्यक्ति को अमर करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे किसी भी तरह से लिया जाए, भाव को भाव अनख्यालसन क्रोध में आलस्य में या जम्हाई देते समय यदि उच्चारण किया जाए भगवान के नाम का, केवल उच्चारण उसी से उसका पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग इसे नहीं ले जा सकते हैं, अगर फिर छूने का प्रयास किए तो देखते हैं कि गदा ही गदा से हम चूर कर देंगे। तो भगवान के पास हो कि गदा और चक्र को देख करके भाग गए, जमपास छोड़ करके भाग गए, जमपास को भगवान के पार्षदों ने काटा। तो ये सच्चा इतिहास है, इस इतिहास को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित कहते हैं, कहते हैं कि यह इतिहास में अगस्त से सुना था, और भगवान वेदव्यास देव से भी सुना। सच्चा इतिहास सच्ची घटना है, विश्वास कीजिए, सब समय भगवान का नाम देते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। इस माया जगत में रहते समय गलती होती ही है, तो सबसे बड़ा भरोसा भगवान के नाम का, सबसे बड़ा साधन यद्यपि ये कंस के मंत्रियों का उद्गार है लेकिन सत्य है। शत्रु छोटा भी हो तो उसका उत्पाटन होना चाहिए, उसका मूलोत्पाटन इसकी जड़ से उखाड़ देना। इसी तरह इंद्रियों की जो भोग लिप्सा है जड़ से उखाड़ना चाहिए। कोई भी गलत दृश्य देखना नहीं चाहिए, कोई चीज खाना नहीं चाहिए, खाने से बिगड़ जाती है इंद्रिया, अपथ्य का सेवन नहीं करना चाहिए। जो वैद्य डॉक्टर कहते हैं वो तो पालन करना चाहिए। तब कंस ने पूछा विष्णु सभी देवताओं का मूल है, कैसे मिलेगा, कैसे मारेंगे। माता दुर्गा ने कहा वो कहीं जन्म ले लिया, उसने भी कोई एड्रेस दिया नहीं, किस गांव में, किस शहर में, किसके घर जन्म लिया है। तब कंस के मंत्रियों ने कहा मूलम ही विष्णु देवा नहीं, समस्त देवताओं का मूल है विष्णु, यत्र धर्म सनातन है। और वह कहाँ रहता है, जहाँ सनातन धर्म रहता है। सनातन धर्म जो शिष्य पर शिष्य आदि संप्रदाय द्वारा अविच्छिन्न अविच्छिन्न चल रहा है, अनादि काल से है, से सनातन धर्म और अनंत काल तक रहेगा। शिष्य पर शिष्य आदि द्वारा इसका अनुष्ठान होता है। यत्र धर्म सनातन, जहाँ सनातन धर्म है वहाँ विष्णु रहते। सनातन धर्म क्या है, तस्य च ब्रह्म गो विप्रः, और सनातन धर्म कहाँ रहता है, जहाँ वेद है। वास्तव में ये सनातन धर्म वेद मूलक है, ब्रह्म जहाँ वेद पढ़ा जाता है, पठन पाठन होता है, इसको पढ़ाने वाले रहते हैं। पाठन का अर्थ है पढ़ाना, पठन का अर्थ है पढ़ना, जहाँ लोग इसको पढ़ते रहते हैं वेद को, और पढ़ाने वाले भी रहते हैं, वहाँ सनातन धर्म रहता है। अब जहाँ सनातन धर्म है वहीं विष्णु है, और विष्णु सभी देवताओं के मूल हैं, सब देवता टिके हैं विष्णु के आधार पर। इसकी स्पष्ट व्याख्या है बृहदारण्यक पुराण में। एक बार श्री नारद जी ने भगवान से पूछा आप ठीक से बताइए आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने कहा नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नीचे। हे नारद, वास्तव में मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, मेरे नाम कीर्तन करते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। भक्ता जब गाय उनके तत्व के स्थान में रहे, मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं, मेरा बखान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। यही है सनातन धर्म असल। कलयुग में तो इसके अलावा कोई धर्म नहीं। कड़ी काले नाम, कड़ी काले धर्म नाम संकीर्तन सा, नाम संकीर्तन इन धर्म का सार है। यही सनातन धर्म है। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ उनका कीर्तन होता है। भगवान ने व्याख्या कर दिया, मैं कहाँ नहीं रहता हूँ और कहाँ रहता ही हूँ निश्चित। मधुभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा विनारद, मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं, मेरा बखान करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। ये असुरों का उद्गार है। वे कह रहे हैं कि विष्णु वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म रहता है, जहाँ विष्णु का कीर्तन होता है वहाँ रह। यद्यपि यह असुर वाक्य है लेकिन कितना सत्य है। असुरों का यह स्वभाव होता है, वे वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, पुराण जानते हैं, लेकिन विष्णु से उनको कोई प्रेम नहीं है। बस पंडित कम नहीं है, पर कृष्ण से प्रेम नहीं। मूलम है विष्णु देवानाम जत्र धर्म सनातन। विष्णु मूल है सभी देवताओं की। भगवान शंकर के भी, ब्रह्मा जी के, देवराज इंद्र के, सबके मूल हैं। ऐसा वर्णन है उपनिषद में। नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति जायते, नारायणात अष्टम बसो जायन्ते, नारायणात एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात द्वादश आदित्य जायन्ते। नारायण से ब्रह्मा हुए, नारायण से प्रजापति हुए, नारायण से एकादश रुद्र का जन्म हुआ, नारायण से अष्ट बसु जन्म लिया और नारायण से द्वादश आदित्य को रख लिया। नारायण ही मूल है, सबको आश्रय देने वाले। सही सर्व सुराध्यक्ष हो, वही विश्व ही सब देवताओं के अध्यक्ष हैं, अधिपति हैं। और रहता कहाँ है तो वो भी बोल रहे हैं, जत धर्म सनातन, जहाँ सनातन धर्म रहता है, जिसका अनुष्ठान होता है, वहीं विश्व रहता है। तस्य ब्रह्म गो विप्रा तपो जज्ञास दक्षिणा। और सनातन धर्म कैसे टिकता है ब्रह्म वेद के अध्ययन से, गो विप्रा जहाँ गौओं का रक्षण होता है, विप्रा ब्राह्मण सनातन धर्म सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित है। ब्राह्मण जहाँ उत्कर्ष को प्राप्त होते वही धर्म को टिकाते हैं, वेद का पाठ करके वेद को पढ़ा करके धर्म को पोषते हैं। गौएं दूध दे करके यज्ञ के हवि को घी देकर पुष्ट करते, गौएं सनातन धर्म को पोषने वाली है। जहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं तपस्वी ब्राह्मण अपने अपने स्वधर्म का पालन करने वाले हैं, यज्ञशील हैं, गायें हविर दुहा घी देने वाली गाय जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है विष्णु को और विष्णु के प्रसाद को सभी देवता खाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मण ब्रह्मवादिन। इसलिए हे राजन सर्वात्मना आत्मा का अर्थ है प्रयत्न, सर्व प्रयत्न द्वारा हम लोगों को चाहिए कि ब्राह्मण का वध करें। ब्राह्मण ही वेद पढ़ा पढ़ा करके विष्णु का प्रचार करते हैं। ब्रह्मवादिना वेद का प्रवचन करने वाले ये ब्राह्मण विष्णु का प्रचार करते हैं। विष्णु के विषय में अनेक कथाएँ कह करके विष्णु का बल बढ़ाते हैं। इसलिए सारा उपाय करके ब्रह्मवादी ब्राह्मणों का वध कर देना चाहिए। ये ब्राह्मण बड़े उत्पाती हैं, जगह जगह पाठशालाएँ खोल करके जनता को विश्व की भक्ति बताते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स चलाते हैं। इन ब्राह्मणों को नष्ट कर देना चाहिए। इन ब्राह्मण रहेंगे वेद का प्रचार रहेगा वेद का प्रसार बंद हो जाएगा तो विश्व अपने आप कमजोर हो जाएगा। विश्व को खोजना तो कठिन है, वो तो निर्जन निर्जन उपास प्रिय हो गया, निर्जन में रहता है। लेकिन हे महाराज, विश्व को मारने का उपाय बता रहे हैं। विश्व को मारने का उपाय है सनातन धर्म को नष्ट करना, और सनातन धर्म को नष्ट करने का उपाय है गाय का वध करना, जिससे यज्ञ की सामग्री हवन न देने पड़े, घी उत्पन्न हो, दूध उत्पन्न हो। सब विष्णु को मारने का उपाय है। यदि समय समय पर भगवान अवतार न लें तो असुर इस संसार को कितना तंग करेंगे। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, जदा जदा ये धर्म से ग्लानी भवति आप, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। जब जब हो धर्म का बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धाई पर विविध शरीर हर ही के पानी के सज्जन पीरा। जय श्री प्रभुपाद।